ओम शांति। गुड मॉर्निंग। बहुत ही सुंदर गीत सुना हमने, ज्योति बिंदु परमात्मा से ऐ मेरी आत्मा कर ले मिलन। तो कहते हैं, हौसले अगर बुलंद हो तो मंजिलें दूर नहीं, पंखों में अगर जान है तो आसमां दूर नहीं, दिल में अगर लगन है तो परमात्मा मिलन दूर नहीं, परमानंद दूर नहीं। सिर्फ लगन की आवश्यकता होती है। तो वो लगन कैसे लगानी है, ताकि आत्मा और परमात्मा का हमेशा मिलन होता रहे, परमानंद की जीवन में अनुभूति होती रहे। तो मिलन की विस्तृत विधि समझाने के लिए हमारे बीच में पधारे हैं हमारी आदरणीय राजयोगिनी रविकला बहन जी। कर्तव्यध्वनि से हम स्वागत करते हैं, सत्कार करते हैं, अभिनंदन करते हैं। आपने 1986 में कर्नाटका यूनिवर्सिटी से इंजीनियरिंग की डिग्री प्राप्त की, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में, और उसके बाद कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग धारवाड़ में आपने टीचिंग कराया, और उसके बाद आप 86 में ज्ञान में आए, 89 में ज्ञान में आए, नहीं यहाँ 98 में आए ना, फिर आपने, हाँ 89 में ज्ञान में आए और 91 में अपना जीवन परमात्मा की सेवाओं में समर्पित किया। 91 से 98 तक येल्लापुर में, कर्नाटका का एक स्थान है, वहां पर मोरल एंड स्पिरिचुअल ट्रेनिंग सेंटर फॉर डेप्यूटेड इन सर्विसेज टीचर्स हैं, वहां पे आपने ऐसा रिसोर्स पर्सन अपनी सेवाएं दी। और फिर आप 98 में हेडक्वार्टर में आए और यहां पर अपनी सेवाएं देने आरंभ की। तो तब से लेकर आप यहीं पर रहते हैं और ऐसा फैकल्टी आप अपनी सेवाएं देते रहते हैं। एजुकेशन विंग से विशेष आप जुड़े हुए हैं और साथ साथ देश भर में, विदेश में भी आप सेवाओं अर्थ भ्रमण करते रहते हैं। अनुभवी राजयोग टीचर हैं, तो हम आपसे सुनते हैं आर्ट एंड साइंस ऑफ राजयोग, कि परमात्मा से हम मिलन किस विधि से करें।
ओम शांति। बहन जी ने तो हमारा आसन बढ़ा दिया, बस हमारा इतना ही परिचय है कि हम आपके हैं और आप सभी हमारे हैं, बस इससे ज्यादा हमारा परिचय है। क्योंकि व्यक्ति जब तक इस संसार में है, कर्म क्षेत्र में है, कर्म इंद्रिय है, कर्म करता ही रहेगा, चाहे अच्छा चाहे बुरा। अगर कर्म अच्छा है तो परिणाम फल के रूप में अच्छा मिलता है, अगर बुरा है तो परिणाम फल के रूप में बुरा है। इसीलिए व्यक्ति को करना है, और वही एक कला है। क्योंकि आज का टॉपिक ही है कला और विज्ञान। कला कब कहते हैं, विज्ञान है क्या? दो अक्षर हम अगर जान जाएंगे तो ऑटोमेटिकली मेडिटेशन एक अंधश्रद्धा नहीं है, वो एक कला भी है, जीवन को कला संपन्न बना देता है, और विज्ञान है जो ज्ञान को प्रयोग में लाने का परिणाम और प्रभाव है। इसीलिए ज्ञान को हम अपने प्रयोगशाला में इम्प्लीमेंट करेंगे तो विज्ञान बन जाता है, उसी का नाम विज्ञान है ना। एक सिस्टमेटिक स्टडी इज साइंस, अगर सिस्टमेटिक नहीं है तो वो विज्ञान भी नहीं, क्योंकि विज्ञान में कोई भी चीज का हम आविष्कार करना चाहते हैं, इन्वेंशन करना चाहते हैं। पहले मैं एक प्रश्न बीच में, कब तक आपका पूरा करना है? बेंजी ने वो बताया नहीं, अभी तो 7:15 होने को आया, 8:30 पूरा करना। ओके, थैंक यू। विज्ञान में भी चार स्टेप्स विज्ञानियों ने इन्वॉल्व किया, एडप्ट किया। फर्स्ट है हाइपोथेसिस, थॉट लेवल में होता है जो भी आविष्कार होता है। हाइपोथेसिस माना थॉट में, ये होता है ऐसा करना, ऐसा करना, ये जोड़ना है। नेक्स्ट है एक्सपेरिमेंटेशन, उसका प्रयोग करता है। तीसरा है वेरिफिकेशन, वेरीफाई करता है कि इसके पुराना वर्जन इससे कैसे भिन्न है। नहीं, 96 मॉडल है, 2000 मॉडल है, 2006 मॉडल है, 3G, 4G, 5G, 8G, 10G, क्या क्या नहीं, पुराने से ये मॉडल जो मैंने आविष्कार किया वो कैसे भिन्न है, ये वेरीफाई करता है। लास्ट में फोर्थ स्टेप है कंक्लूजन, ही विल कंक्लूड इस विचार में ये एस्पेक्ट में ये भिन्न है और सुपीरियर है मेरा। ये पेट्रोल कम कंज्यूम करता है, डीजल जो भी है वो ज्यादा स्पीड का है, वो ये है, मॉडल ऐसा है, ड्यूरेबल है, ये मेरा क्या क्या है, इसीलिए सबसे अच्छा है, भले दाम ज्यादा है तो भी मेरा काम ज्यादा देगा। नहीं, ये है उसका कंक्लूजन, इसको कहते हैं विज्ञान। एक हाइपोथेसिस थॉट लेवल, नेक्स्ट एक्सपेरिमेंटेशन थर्ड लेवल में, वेरिफिकेशन फोर्थ लेवल में है कंक्लूजन। इसी प्रकार से यह मेडिटेशन भी एक विज्ञान है, ऐसे नहीं ऊपर है नीचे है इधर है उधर है, आंखें बंद करो, रेड लाइट करो, सो जाओ। भगवान तुमको क्या समझ में आता है, तुम तो ऊपर हो, हमारा क्या प्रॉब्लम है, तुमको समझ में नहीं आता, तुम तो कहते हो शांति शांति शांति, लेकिन हम कितने अशांत है, लोग कितने अशांत हमारे चारों ओर बैठे हैं करने के लिए, तुमको सब समझ में नहीं आता। इसीलिए हम जो कहते हैं तुम करते रहो, बस इतना ही। हम जो अपना एप्लीकेशन डिमांड्स का रखते हैं उतना करो बस, बाकी आप टेंशन नहीं लो, कहते हैं उसको डर नहीं। ए दुनिया बनाने वाले, क्या तेरे मन में समय आता, काय को दुनिया बनाए, वाई डिड यू क्रिएट। इतना मनुष्य बड़ा हो जाता है उसको क्वेश्चन करना शुरू करता है कि वाई डिड यू क्रिएट, क्यों तुमने क्रिएट किया। अगर नहीं करता तुमको भी शांति होती, हमको भी शांति होती, हमको भी क्या। लेकिन ऐसा नहीं है, उसके उपलक्ष्य में है कला, उसके परिप्रेक्ष्य में है कला शब्द, क्योंकि करना ही है हमें, आना ही है हमें इस स्टेज पर, अपना पार्ट बजाना ही है, इसके लिए कोई एक्सक्यूज नहीं है। लेकिन उसको कैसे हम बेहतरीन बना सके, उसके लिए है उस क्रिएटर का, डायरेक्टर का हमें डायरेक्शन। अगर वो जैसे कहता है वैसे चले तो जीवन हमारा कला संपन्न बन जाता, क्योंकि जीवन में कर्म तो करना ही है। सिंपल एग्जाम्पल, झाड़ू लगाना है, समझो दो के, अभी तो स्वच्छता अभियान चल रहा है, दो के हाथ में हमने झाड़ू दिया, तीसरे के हाथ में भी दे दिया, तीन व्यक्ति, एक है कामचोर जो जिसको हम सर्वेंट कहते हैं, पैसे के लिए रखते हैं, मालकिन है, कोई देखने वाले है तो ज्यादा ज्यादा करेंगे, अगर नहीं है तो इधर का इधर करके बैठ जाएंगे बात करना, एक फर्स्ट कैटेगरी। दूसरा है हमारा अपना है, करना ही करना है, बहुत अच्छा सजाना है, बहुत स्वच्छ रखना है, सारा दिन झाड़ू के पीछे लगे रहते, इधर का करेंगे उधर का करेंगे, करते रहेंगे सारा दिन, देखने वाले पूछेंगे तुमको तो कोई दूसरा काम नहीं है क्या, झाड़ू लगाना ही एक काम है क्या, करते रहेंगे, घिसते रहेंगे। ये सेकेंड कैटेगरी। लेकिन तीसरा है समय की सीमा को ध्यान में रखते हुए उस समय जितनी जहां जो जरूरत है वो स्वच्छता करके साफ सुथरा रखना। तो ये तीन कैटेगरी में कला संपन्न कर्म किसको कहेंगे आप? तीसरे को ही कहेंगे, क्योंकि वहां एक रीति है, वहां एक नीति है, वहां एक कर्म है, ये सभी से कनेक्टेड है। तब हम कोई भी कर्म, चाहे खाने का हो, चाहे सोने का हो, चाहे बोलने का हो, चाहे बैठने का हो, चाहे लिखने का हो, जो भी कर्म सुबह से रात तक हम करते हैं वो कर्म तभी कला संपन्न बन जाता। जब हर कर्म को कला संपन्न बनाएंगे तब जीवन ही कला संपन्न बन जाता। तो ये कला और विज्ञान कैसे हमारे जीवन से कनेक्टेड है, कैसे ये मेडिटेशन से कनेक्टेड है, वो हम आज के क्लास में देखेंगे। ठीक है, शुरू करने से पहले मैं जानना चाहती हूँ कि इसमें नए कितने हैं, पुराने कितने हैं? नए कितने हैं, हाथ उठाई। अच्छा, टोटल नए फर्स्ट टाइमर्स, फर्स्ट टाइम। उस फर्स्ट टाइम में भी एक सब डिवीजन है। अगर वहां क्लास में जाते हैं, चलो यहाँ फर्स्ट टाइम आए हैं, लेकिन वहां आपके कोलाबा या जो भी सेंटर से आए हैं वहां जाते हैं, या इसके बारे में थोड़ा बहुत सुना है, यहाँ क्या पढ़ाते हैं सिखाते हैं ये थोड़ी जानकारी रखे हुए हैं, तो वो हाथ उठाई। अच्छा, बिल्कुल न्यू ब्रांड, वो हाथ उठाए। उनको कुछ मालूम नहीं, जस्ट हमको इन्होंने फोर्स किया, अभी क्या करें, विरोध तो कर सके। हमको कोई आपके अध्यात्म में, आपके इसमें आत्मा परमात्मा में एक पैसे का भी इंटरेस्ट नहीं है। बाकी ये हिल स्टेशन है, घूमने का स्थान है, टूरिस्ट प्लेस है, चलो घूम के जाएंगे चार दिन। ऐश क्या क्या मेरे से पूछो, मतलब मेरे से पूछो, क्या पूछना, पूछना है कुछ नहीं, बात करना है मेरे से करना, अभी एक घंटा। ठीक है, ये फर्स्ट कैटेगरी। अब दूसरी कैटेगरी जो आते ही रहते हर साल, वो हाथ, क्योंकि उनके लिए तो कुछ नया नहीं है, फिर भी दोनों को मिला के चलना काम हमारा है। तो आज हम यह देखेंगे कि हम कैसे मेडिटेशन को आर्ट और साइंस बना सकते हैं। क्यों क्यों? क्योंकि एक प्रिज्म देखा है आपने, चलो एक इंद्रधनुष तो देखा होगा, प्रिज्म मना ये अनेक एंगल्स होते हैं, ग्लास का होता है। या तो आप और ही सिंप्लीफाई करो तो इंद्रधनुष देखा होगा, धूप भी है बारिश भी है, उस समय सात रंग निकलते हैं, देखा है ना, ये सभी देखा है, जानते हैं सात रंग निकलते हैं। और ये सत्य भी हम जानते हैं कि उस सात रंग से ही एक रंग निकलता है सफेद, ऐसे ही विज्ञान में इसका प्रयोग किया जाता है, स्कूल्स में इसका प्रयोग कराते हैं बच्चों से। एक प्रिज्म में एक लाइट का किरण, रे ऑफ लाइट, व्हेन इट फॉल्स इन द प्रिज्म सेवन कलर्स आर एमिटेड, सात रंग निकलते हैं। विब गॉयर कहते हैं, वायलेट है उसमें, इंडिगो, सात रंग। ऐसे ही जीवन में जब मेडिटेशन पार्ट एंड पार्सल बन जाता है, when meditation becomes part and parcel of our life, seven colors are emitted. Seven colors are emitted. The first color that is emitted is that of virtues. First rang, जब meditation का अभ्यास हम करते हैं, विज्ञान कैसे है इसका explanation है, जब meditation को हम हमारे जीवन का अविभाज्य अंग बना देते हैं, तब पहला रंग जो निकलता है हमारे जीवन से वो है वर्चुस, दैवी गुणों का रंग पहले निकलता है। थोड़ा ही क्यों ना करे, सडनली हमारा जो कॉन्शियस है कहता है वो कर रहे हैं, तो हम क्यों करें, हमको क्यों इनको फॉलो करना है, ना हम इनको देख के आए हैं, ना हमें इनको देख के जाना है, आना हो गया है, जाना सामने है, लेकिन इन दो किनारों के बीच में जीना है, इसको मैं कैसे बेहतरीन बना सकूं, ये मेरे हाथ में है, इसीलिए मुझे इसको फॉलो नहीं करना है, ये हमारा कॉन्शियस कहते नहीं। रामायण में आपने देखा होगा बार बार ये लक्ष्मण चिढ़ता है और कहता क्यों भैया तुम क्यों इसको माफ करते हो, तो राम कहते हैं वो भी ऐसा करे हम भी ऐसा करे डिफरेंस क्या रहा। बार बार वहां चिढ़ता रहता है, शकुनी हो दुर्योधन का एक्टिविटी हो जो भी हो, कृष्ण उनको शांत करता। द्रौपदी चिल्लाती है क्यों युद्ध नहीं करते हो, तो कहता है तुम अकेले की समस्या नहीं है ये, युद्ध माना हजारों लाखों की समस्या है, इसीलिए शांति, खुद शांति उत्पन्न कर जाता। ये दैवी गुण, दैवी गुण क्या है, भले वो गलत करे लेकिन हम ऐसे हो जाते सर्टिफाई तुरंत कर देते, हाँ मैंने देखा है 10 साल से वहां जाता है लेकिन शांति नाम का हमें सब पता है। उधर जाता है सबसे पहले जाके आंखें बंद करके बैठता है, सबसे लास्ट वहां आश्रम से निकलता है, लेकिन यहाँ 2 मिनट लेट हो जाए उसकी बीवी नाश्ता देने का थाली, अभी ये क्या शांति, बेचारी बीवी तो सेंटर जाती ही नहीं है। नमक ये इसको नाश्ता कहते क्या, इसको ये कहते हैं क्या, नमक नहीं ये नहीं वो नहीं, तुमको आता नहीं है, चली जा तुम्हारे बाप के घर, कहा तो शांति कहाँ चली गई वहां तो क्या इसीलिए हमारा लाइफ संदेश दे, ये संदेश न दे कि हम ऐसा है ना वैसा है ना क्या है ना क्या नहीं है ना, जरूरत नहीं, हमारा कर्म बोले वो कला बन जाते नहीं। अभी हम सुन रहे हैं चारों ओर स्वच्छता अभियान स्वच्छता अभियान स्वच्छ, अल्लाह तुम्हारे अपने पर्सनल काम के लिए 4 नौकर है, अभी तुम क्या देश तक देश की स्वच्छता करो, खुद का काम करो, खुद का करो, आसपास का तुम्हारे अपने, क्योंकि कुत्ता जानते उसको भी इतना अकल है जब बैठता है अपने पूंछ से उस एरिया को साफ करके बैठता है, कुत्ते को भी इतना है अकल साफ करके बैठता है, लेकिन मनुष्य को इतना भी अकल नहीं है, जहां बैठता है जहां खाता है जैसो वहां ही गंदगी करके, बाहर की तो अस्वच्छता छोड़ो अंदर कितना भरा पड़ा है, जानवरों में एटलीस्ट अंदर की तो सफाई है, शिकारी है चाहे वो शेर हो चाहे जो भी हो क्रूएल जो भी जंगली है नॉन वेजिटेरियन, मारेंगे शिकार करेंगे खाएंगे लेकिन दोबारा मुड़ के देखेंगे नहीं, वो कौन खाएगा कौन लेके जाएगा, इसको रख के निकाल के कहीं मैं स्टोर करूं नेक्स्ट मील के लिए, ये मेरे लिए होगा कभी नहीं सोचेगा, वो सीधा चला जाए, कोई भी खाए कोई भी छोड़े कुछ भी हो अंदर माइल नहीं। लेकिन मनुष्य कितने जनरेशन के लिए इकट्ठा करके रखता, भले कोई मरे भूख से उसको कोई दया नहीं आती, तो स्वच्छता कहाँ चाहिए, एक दिन झाड़ू लगा के वो भी बराबर नहीं लगाएंगे, लेके खड़े हो जाएंगे फोटो के लिए लगाएंगे, थोड़े फोटो के लिए खड़े होंगे तो क्या है ना, बाहर की स्वच्छता ना अंदर, इसीलिए अंतर शुद्धि भी चाहिए बाहर शुद्धि भी चाहिए। तो कला तभी हम संपन्न कर सकते हैं, जीवन को कला संपन्न तभी बना सकते हैं जब उस कर्म के प्रति हमारी निष्ठा हो हमारी श्रद्धा हो, तीसरा उसके फल की अपेक्षा न हो, उसी को भगवत गीता में हाईलाइट किया है, गुरु के रूप में, गुरु के रूप में खड़ा है वहां कृष्ण, अर्जुन है उसका शिष्य, समस्त मानव कोटि के पूर्ण प्रतिनिधि के रूप में, अनेक प्रश्न उसके मन में उठ रहे हैं, ज्ञान क्या विज्ञान क्या योग क्या क्या है आखिर, पूरा कंफ्यूज है डिप्रेस्ड है वो, तब ये सुनाता जाता भाई योग हा समत्वम उच्चते, योग हा कर्मसु कौशलम, कर्म में कुशलता लाना ही योग, क्योंकि योगी का कर्म ऐसा नहीं होगा तो इसको कहने के बजाय मैं खुद कर लेती तो अच्छा होता, टाइम बच जाता और मेरा काम भी हो जाता, दिमाग की शक्ति तो बच जाती, इसको बोल बोल के फिर खराब करने का रिपेयरिंग करने में ही मैं, वो योगी का कर्म नहीं, योगी का कर्म ऐसे होता है उसमें परफेक्शन भरा हुआ रहता है, परिपूर्णता संपन्न कर्म ही योगी कर सकता है, क्योंकि उसके पीछे है उसका विज्ञान, विज्ञान क्यों, क्योंकि कहा जाता है अवस्था ठीक नहीं तो व्यवस्था भी ठीक नहीं कर सकते, अवस्था ठीक नहीं तो व्यवस्था भी ठीक नहीं कर सकते। इधर डिस्टर्बड है, इधर कंफ्यूज है, इधर अपसेट है, इधर टेंशन में है, तो उसका कर्म भी वैसा ही। अरे कुछ याद करते करते नमक ही भूल गई, अभी क्या है। अरे कुछ याद करके करके अरे ये देना ही भूल गई, देखो बना के तो रखे थे परोसना ही भूल गई, अभी ये कोई योगी का लक्षण है क्या। भले कर्म कर रहा है लेकिन एक्यूरेसी और परफेक्शन के साथ अगर वो करेगा और उसमें खुद का भी हित हो, समाज का भी हित हो, तो वो है वर्चू या दैवी गुण उसके पीछे। तो सेकंड कलर दैट इज एमिटेड फ्रॉम अवर लाइफ इज होलिस्टिक हेल्थ। जहां दैवी गुण है तो ऑटोमेटिकली हमारा संपूर्ण स्वास्थ्य वहां पीछे है। क्योंकि आजकल हम सुनते हैं साइकोसोमेटिक डिसीजेस, साइको माना मन, सोमा माना शरीर। जब तक मन ठीक नहीं है तब तक ये शरीर भी ठीक नहीं हो सकता। देखो हमारे बाप माँ कितने तंदुरुस्त थे, उनके माँ बाप कितने शक्तिशाली थे, न चश्मा न कान का है। और आज हम कितने बूढ़े हो गए हैं कि हम बोझ उठा नहीं सकते, हमारे बच्चे तो हमसे ज्यादा बूढ़े हो गए। क्यों? प्रकृति की शक्ति, तत्वों की शक्ति कम होती जा रही है, ऑटोमेटिकली प्रकृति से बना हुआ यह शरीर भी कमजोर होता जा रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ इस विश्व को तीन प्रभेद में हम विभाजन कर सकते हैं, प्रकृति पुरुष परमात्मा। प्रकृति ये पंच तत्वों का, पुरुष ये संस्कृत शब्द आत्मा, परम पुरुष माना परमात्मा, ये तीनों का ही खेल है। तो यहाँ भी यह मेडिटेशन ये तीनों का ही जोड़ है, क्योंकि योग यह संस्कृत शब्द है, फिर से युजते अनेन इति योगः, संबंध जोड़ना। पुरुष का प्रकृति के साथ संबंध है, पुरुष का परम पुरुष के साथ संबंध है। प्रकृति के साथ संबंध विनाशी है, परम पुरुष के साथ संबंध अविनाशी है, उसी को हम यहाँ कहते हैं विज्ञान। तो फर्स्ट कलर वर्चू उसका हो गया। दूसरा कलर है होलिस्टिक हेल्थ, जिसमें फिजिकल आया, जिसमें मेंटल आया, जिसमें इमोशनल आया, जिसमें इंटेलेक्चुअल आया, जिसमें सोशल हेल्थ आया, लास्ट में इसमें आ गया स्पिरिचुअल हेल्थ। फिजिकल हेल्थ चाहिए, ये तो चाहिए फूड एंड नरिशमेंट से, अभी एक कंट्रोलिंग पावर से, क्योंकि अभी डायलिसिस चल रहा है फिर भी खाऊं 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 करेंगे तो क्या होगा, कंट्रोल ही नहीं। और उसके लिए एक पॉलिश करेंगे, मरना ही है तो खाके मरेंगे ना, इसको कोई मनुष्य जीवन कहते? आज देखो कोई बंदर को भी देखो, बिल्ली को भी देखो, अगर तबीयत ठीक नहीं है तो घास खाएगा, वोमिट करेगा, उपवास रहेगा, अपने हेल्थ को ठीक करेगा। अभी बंदर भी सुबह सुबह देखो नीम का पत्ता खाएगा, नीम का फूल खाएगा, उनके लिए कोई डॉक्टर नहीं, कोई हॉस्पिटल नहीं। दुर्भाग्य है मनुष्य के जीवन में, हम इतना फॉरवर्ड हो गए, इतना सक्सेस कर लिया, हर अगस्त 15 को भाषण सुनते हो, इतना ज्यादा किया, हॉस्पिटल्स की संख्या बढ़ा रहे, कोर्ट्स की संख्या बढ़ा रहे, जेल की संख्या बढ़ा रहे, डॉक्टर्स की संख्या बढ़ा रहे, दवाओं की संख्या बढ़ा, ये कोई प्रगति और उन्नति की कोई रूपरेखा है क्या? डिफेंस के लिए हर साल कितना अमाउंट हम बढ़ाते जा रहे, ये कोई हेल्दी सोसाइटी का लक्षण है क्या? नहीं। अगर व्यक्ति हेल्दी तो सोसाइटी हेल्दी, तो फिजिकली हेल्दी वी आर, मेंटली हेल्दी वी आर, इमोशनली हेल्दी। क्योंकि एक जानवर को दूसरा जानवर देखता है तो डरता नहीं है, शेर को देखेगा शेर डरेगा नहीं, चीता को देखेगा वो भी डरता नहीं है, सांप को देखेगा दूसरा सांप डरता नहीं है। लेकिन दुर्भाग्य आज मनुष्य पता नहीं है क्या करेगा, सुबह सुबह इसको देख लिया, आज गारंटी है कुछ होगा, होगा कुछ गड़बड़ होगा कहे ये सर। अब ये कोई लाइफ है कि मनुष्य का जीवन सर्वश्रेष्ठ कहते हैं, लेकिन कनिष्ठ एक्टिविटी उसका आज हम देख रहे, आदमी को देख डर रहा है आदमी को लूट घर भर रहा है आदमी, मर रहा है आदमी, मार रहा है आदमी, आदमी को देख खुद हैरान है यार। जानवरों को देख हैरान नहीं है, उसको अंदाज हो सकता ही है कि यार आए मुझे काटेगा मैं मरूंगा, बस इतने अंदाज है। लेकिन ये सामने आएगा ये क्या करेगा क्या नहीं करेगा, इसीलिए आधा भय में जी रहा है मन। कोई अच्छा हंस रहा है तो हमें सहन नहीं होता है, आज हंस रहा है ना कल उसको रुला के ही छोड़ूंगा मैं, छोड़ूंगा। अगर बच्चे हंसते हैं घर में तो भी हम शांति से रहेंगे, क्यों इतना हंस रहे हो, बाद में रोना है क्या, बैठो चुप बैठो। बच्चे हंस रहे हैं उल्टा वहाँ लाफिंग क्लब खोल के वहाँ करेंगे, वो कोई दिमाग का काम है क्या? नहीं, ये प्रैक्टिकली अगर हम सोचेंगे कि हम कर क्या रहे हैं, आश्चर्य हमें ही होता है नहीं, कि हमारे एक्टिविटीज पर हमें ही आश्चर्य होता है। इसीलिए सेकेंड कलर दैट इज एमिटेड फ्रॉम अवर लाइफ एंड मेडिटेशन बिकम्स पार्ट एंड पार्सल ऑफ अवर लाइफ इज होलिस्टिक हेल्थ। क्यों? फिजिकली वी आर अनहेल्दी, मेंटली वी आर अनहेल्दी, इमोशनली अनहेल्दी, इसके सब का कारण है फाउंडेशन, वी आर स्पिरिचुअली अनहेल्दी। इसीलिए कहा जाता है वी आर फिजिकली इल, मेंटली निल, मॉरली नॉट सो वेल एंड हैव मेड द लैंड अ हेल। हमने ही हमारे लिए नरक को, भले सुविधा है साधन है, we have gained control over the nature but have lost control over our own nature. वहां प्रकृति तत्वों पर हमने प्रभुत्व पा लिया, गर्म है तो ठंडा करके बैठेंगे, ठंडा है तो गर्म करके बैठेंगे, लेकिन ये खोपड़ी गर्म हो जाएगी तो ठंडा करने का कोई साधन विज्ञान ने आज तक दिया नहीं। एसी गाड़ी में घूम रहा है, एसी कमरे में बैठ रहा है 24 आवर्स, लेकिन ये पूरा पूरा भले कई बार कितना दवा देंगे इंजेक्शन देंगे तो भी इसको नींद नहीं आती, पता नहीं कितना हम दवा दे रहे हैं ये और भी बड़बड़ कर रहा है इतना नहीं। क्यों? मनुष्य अपने ही कंट्रोल को ले। ये जब तक मनुष्य अपने स्पिरिचुअल हेल्थ के बारे में सोचेगा नहीं, उसके लिए करेगा नहीं, तो अपर लेयर्स में जो स्थूल लेयर्स में है इमोशनल सोशल फिजिकल ये सभी अपना रंग दिखाते ही रहेंगे, क्योंकि ये इसके लिए चाहिए। आज 100 साल पहले हम देखते ब्यूटी पार्लर्स नहीं थे, आज देखो गली गली में घर घर में ब्यूटी पार्लर, ब्यूटी पार्लर है, एक शराब का दुकान होता है एक ब्यूटी पार्लर, ये तो कंपलसरी हर शहर में होना ही होना। क्यों? बाहर का सौंदर्य को बढ़ाने का हर एक में क्रेज है, व्यक्ति कैसे दिखना चाहिए इसके बारे में ज्यादा कॉन्शियस है, लेकिन रहना किस कैसे, मिस इंडिया को, मिस यूनिवर्स को, मिस स्टेट, कितने मिस हो गए हैं, उनको अवार्ड भी देते रहते, लेकिन वो है टेम्पररी। आज हम देखते हैं चाहे मदर थेरेसा हो, जो भी कितने भी हम देखते हैं जिनको आज के डेट में भी लोग याद करते हैं, संसार याद करता है, उन्होंने बाहर के सौंदर्य को महत्व दिया ही नहीं, उन्होंने अपने गुणों एवं शक्तियों को बढ़ाने के पीछे लगे रहे, जिस कारण आज उस समय जो समाज उनको जीने नहीं दिया आज वही समाज उनके सामने झुक रहा है। ये है स्पिरिचुअल हेल्थ। तो ये हेल्थ है तो तीसरा रंग जो निकलता है वो है ऑप्टिमिज्म, आशावादी। जब ये हेल्थ है, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, यहां नहीं तो यहां, यहां नहीं तो यहां, हम आगे बढ़ेंगे जरूर, दरवाजा बंद नहीं करेंगे, निराशावादी नहीं बनेंगे, आशावादी बनकर हम आगे ही आगे कदम रखते जाएंगे। ये तीसरा है। आज हम देखो यूनिवर्सिटी में हमारे बच्चे जा रहे हैं, मास्टर डिग्री ले रहे हैं, मास्टर ऑफ साइंस, मास्टर ऑफ इंजीनियरिंग, कितने सब्जेक्ट में मास्टर्स होते, लेकिन मन का मास्टर, जीवन का मास्टर वो बन नहीं पा रहे हैं, कभी नहीं बन पा रहे हैं, इतना वो दास हो गए हैं उसको भूलने के लिए कोई ना कोई, कोई ना कोई गलत तरीका अपना रहे हैं। लेकिन ऑप्टिमिज्म एक ऐसी दवा है जो मनुष्य को कभी भी दरवाजा बंद होने नहीं देता। मैं जब 86 में डिग्री पूरी हो गई, 82 में इंजीनियरिंग का सीट, उस समय इतने सारे एंट्रेंस एग्जाम्स, ये क्या क्या आजकल हजारों हो गए हैं, उस समय इतने नहीं थे। फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी या फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स के कॉम्बिनेशन के अनुसार हमारा जो स्कोर होता था उसके अनुसार जिस कॉलेज में जिस ब्रांच के लिए हमें एडमिशन लेना है वो पेपर में हमारा एग्जाम नंबर आता था। तो मेरा भी नंबर आया और मैं गई एडमिशन के लिए। एडमिशन तो हुआ ही नहीं, रजिस्ट्रार ने कहा यू कम टुमारो। बोला दूर से आई हूँ, क्यों, आज तो छुट्टी नहीं है, हॉलीडे नहीं है, कोई फेस्टिवल नहीं, क्यों एडमिशन नहीं है? तो उसने कहा अवर क्रीम ऑफ द कॉलेज हैज कमिटेड सुसाइड सो कॉलेज रिमेन्स क्लोज्ड, कम टुमारो, इतना कहा। अपने जो अन्य स्टाफ थे उनको कहा जस्ट लॉक इट अदरवाइज दीज पीपल विल डिस्टर्ब अस, लॉक इट, कहा। तो टाइपिस्ट उनको भी वही चाहिए था, ताला लगाए चले गए। फिर करना क्या, वापस आ गए, बस स्टॉप में खड़ी थी, और भी स्टूडेंट्स उतर रहे थे बस में, एक दो गर्ल स्टूडेंट्स मेरे पहचान के थे, तो मैंने पूछा, ये मेरे समझ में नहीं आया कि क्रीम ऑफ द कॉलेज कहता है सुसाइड कमिट किया कहता है, भाई उसको हुआ क्या था, हमारा देखो ये सुसाइड किया तो हमारा काम अधूरा हो गया, काम हुआ ही नहीं का। तो उन्होंने कहा सिंपल एग्जाम्पल, वो मुझे टर्न होने को मजबूर किया इस लाइन में आने के लिए। क्यों? क्योंकि वो लड़कियां बोले चलो तुम हमारे कॉलेज के पीछे ही, वो बेंगलोर पुणे ये जो ट्रेन जाती है ना वो उसका ट्रैक है, वहां बाजू में ही बॉयज हॉस्टल है। रात को 12 बजे कर्नाटक यूनिवर्सिटी से रिजल्ट अनाउंस हो गए, सुबह 4 बजे वो ट्रेन आती है, तो वो ट्रेन में वो ट्रैक में गिरा और गया, हम भी देखने गए, वहां ही पीछे ही था 5 मिनट का रास्ता। तो वहां सब इकट्ठे हुए थे ग्राउंड में, तो पूछा इसको हुआ क्या था, इतना ही कारण क्या। फर्स्ट से नाइन्थ सेमेस्टर तक वो कर्नाटक यूनिवर्सिटी का रैंक होल्डर रहा, फर्स्ट रैंक आता था, 10th सेमेस्टर में उसको सेकंड रैंक मिला। जो फर्स्ट क्लास सेकंड रैंक या डिस्टिंक्शन में आता था उसको लास्ट सेमेस्टर में माना 10th सेमेस्टर में फर्स्ट रैंक मिला। ये तो विधि का खेल है, कुछ ना कुछ उल्टा सुलटा लास्ट में हो जाता है, जो एक्सपेक्टेड है वो होता नहीं है, जो अनएक्सपेक्टेड है। लेकिन ये लड़का नाइन्थ सेमेस्टर तक रैंक रहा, लेकिन सेकंड लास्ट स्टेज में 10th सेमेस्टर में इसको सेकंड रैंक मिला। रिजल्ट 12 बजे आए, अनाउंस हुए, ये सुबह 4 बजे गिरा। अभी ये कोई बुद्धिमान ही है, जो 100 का 100 लिया परीक्षा में, अपने जीवन के परीक्षा में फेल हो गया, ये कोई बुद्धिमान नहीं। चलो ये तो बेवकूफ है लगा मुझे, फिर क्या करना, लोग वहां पेड़ के नीचे और लड़कियां खड़ी, चलो उधर जाएंगे, उधर गए। वहां एक बूढ़ी बूढ़ी माता रो रही थी बेचारी, कभी कभी देख रहे थे उस डेड बॉडी को, कभी रो रही थी, फिर देखा नहीं जा रहा था उसकी अवस्था, मेरे को लगा इसका ही कोई क्लोज कनेक्टेड रिश्तेदार है। तो मैंने जस्ट दूसरे को पूछा कौन है ये, इसकी माँ है, तो उसको कंसोल कर रहे थे बाकी लड़कियां। तो मैंने फाइनली इतना समझ लिया कि वो उसका अकेला लड़का। जब मेरे समझ में आया, जब 3 मास का ये बच्चा था उसके बाप का एक्सीडेंट हो गया था, वो मर गया। ये इतनी पढ़ी लिखी नहीं थी, तो उसके रिश्तेदार ने उसका सब प्रॉपर्टी जो भी खेती ये वो था वो ले लिया था, तो उसको कंगाल कर दिया था। ये दूसरों की खेती में घास काटने का कुछ कुछ काम करने काम करती थी और इसको पढ़ा रही थी ताकि मेरे जैसी परिस्थिति मेरे बच्चे को जीवन में न आए। अभी आज के दिन का इंतजार कर रही थी कि मेरा बेटा अभी नौकरी करेगा, मुझे संभाले, लेकिन समाचार मिला। तो देखो उस माँ के लिए इसने क्या किया, जिन्होंने इसको पढ़ाया लिखाया इतना आगे बढ़ाया उनके लिए क्या किया, देश के इतने रिसोर्सेस उनके लिए यूज हुआ उसके लिए, देश के लिए इसने क्या किया, चलो इन सबको छोड़ो खुद के लिए भी क्या किया, इतना तो अकल होना चाहिए। एजुकेशन का लक्ष्य ये तो नहीं है, एक दरवाजा बंद होगा तो दूसरा खोलना, दूसरा होगा तो तीसरा, कैसे भी हो कोई भी विघ्न हो कोई भी परीक्षा हो हमें सफल होना ही है जीवन के परीक्षा में, ये हमें सिखाता है स्पिरिचुअल एजुकेशन। एजुकेशन लिटरेसी नहीं है, इसीलिए तीन लेवल्स में स्टडी किया जाता है, एक ज्ञान है, एक एजुकेशन है, एक लिटरेसी है। लिटरेसी में अक्षर अभ्यास है, ले लो चलो डिग्री लो नौकरी लो, यहाँ पूरा आउट। एजुकेशन में एक डिसिप्लिन है, एक स्टैंडर्ड है, मेंटेन करते हैं, समाज में स्टेटस है। ज्ञान में दूर कोई बैठा है गुफा में, जंगल में, सारे विश्व के हित के लिए सर्वे जनाः सुखिनो भवन्ति कर रहा है, तपस्या कर रहा है, वो है ज्ञान। इसीलिए चार प्रकार के लोग भगवान को याद करते हैं, योग मना ही संबंध। कौन है वो चार प्रकार के लोग? आर्तः, अर्थार्थी, जिज्ञासु और ज्ञानी। चार प्रकार के लोग उसको याद करते हैं, वही मेडिटेशन। मेडिटेशन प्रकृति के साथ संबंध है या परम पुरुष के साथ संबंध है पुरुष का। तो तीसरा रंग ऑप्टिमिज्म, उसके साथ संबंध जोड़ने से हमारे जीवन में आ जाता है। जब ये तीन रंग है तो चौथा रंग निकलता है रिलैक्सेशन। रिलैक्स, टेंशन नहीं करो कहेगा बेटा, तो भी बाप टेंशन करता ही रहे, बेटा तुम गया, बेटा तुम आया, बेटा तुम खाया, अला बुढ़ा हो गया, वो बाप हो गया, फिर भी इसका टेंशन खत्म होता ही नहीं। टेंशन टेंशन क्या, हम संसार में लेके आए थे क्या या लेके जाने वाले हैं? कहे कोई इसका बोझ उठा के घूमते रहना। इसीलिए प्रश्न पूछता है गुरु शिष्य को, तुम संसार में हो या संसार तुम्हारे में? अभी आप बताइए, आप संसार में हो या संसार आप में है? आपके अंदर है तो कुलाबा को लेके आए हो साथ में। संसार हमारे अंदर है कहे तो वही चलेगा सोच। अगर हम संसार में है, अगर हम संसार में है तो है तो ओके, नहीं है तो अलग। इसीलिए संसार को अपने अंदर बिठा के कभी जीवन नहीं जीना, वो योगी जीवन नहीं। समझ में? संसार अपने अंदर में है तो यहाँ बैठ कर भी सोचते रहेंगे, बराबर दरवाजा बंद किया या नहीं किया, दूध लेकर रखा या अंदर फ्रिज में, या ऐसे ही छोड़ेगा, बिल्ली आएगे पी के चले जाएंगे। हाँ, ये सोच चलेगा तो संसार को हमने अंदर बिठाया। अगर हम संसार में है तो कोला में रहे तो कोलाबा के, घर में रहे तो घर में, आश्रम के तो आश्रम के, चलो जाए हरिद्वार गए तो हरिद्वार के हो गए, टेंशन। क्योंकि योग सिखाता ही, तभी तो कला संपन्न है ना। अंदर रह के जिएंगे तो कला संपन्न कैसे बनेगा जी? कला और विज्ञान है ना, मेडिटेशन ये सिखाता। तो चौथा रंग के बाद है पांचवा रंग, सेल्फ मैनेजमेंट। व्यक्ति अपने आप को मैनेज कर सकते हैं, हमें कोई और मैनेज ना करे। कहा जाता है मैन इज एबल टू मैनेज मनी, ही इज एबल टू मैनेज मैन, बट इज अनएबल टू मैनेज हिज ओन माइंड। जनरल मैनेजर है कंपनी का, हजारों लोगों को मैनेज करता है, लेकिन घर में राजा, राजा का हुक्म रानी। आपको इतना भी समझ में नहीं आता है कि हाँ हाँ नहीं समझता हूँ समझता हूँ कहेंगे। इसीलिए अपने मन को मैनेज करना एक कला है, ये सिखाते हैं। नेक्स्ट है सेल्फ मैनेजमेंट के बाद। सेल्फ मैनेजमेंट माने जो मुझे देखना है वही मेरे आंख देखे, जो मुझे सुनना है वही मेरे कान सुने, जो मुझे बोलना है वही मेरे मुख से निकले। अदरवाइज अरे इसको जब भी मैं देखती हूँ बोलना नहीं चाहिए, बोलना नहीं चाहिए, फिर वो बोलेगी तो मेरे से चुपरा नहीं जाता है, मैं बोल के ही आती, फालतू में टाइम वेस्ट। क्योंकि वो तो सुधरने वाली नहीं, अला वो सुधरने वाली नहीं है ये फाइन, लेकिन मैं क्या सुधर रही हूँ अपने आप को, ये आधा पार्ट छोड़ देते। इसीलिए सेल्फ मैनेजमेंट माना अपने को, इधर कंट्रोल नहीं, इधर कंट्रोल नहीं, इधर कहाँ भी कंट्रोल ही नहीं है दूसरों को। सेल्फ मैनेजमेंट का कोर्स कराते हैं तो कौन सुनेगा क्या मैनेजमेंट होगा वहां। इसीलिए पहले अवस्था को ठीक रखना जरूरी है, तभी व्यवस्था को ठीक रख सकते हैं ऑटोमेटिक हो जाए, ये योग का परिणाम है। इसके नेक्स्ट कलर है बिहेवियरल चेंज। जब व्यक्ति सेल्फ को मैनेज करना सीख लेगा, उठना है इतने बजे उठना, सोना है इतने बजे सोना, इतने बजे खाना है, इतने बजे यहाँ जाना, कितना सिस्टमेटिक टाइम, एक डिसिप्लिन है। ये पांच इंद्रियां तभी हमारे कंट्रोल में होंगे जब हमारा सिक्स्थ सेंस जागृत है। ये अगर पांच इंद्रियों के हम दास है तो हमारा सिक्स्थ सेंस काम नहीं करेगा। देखो घड़ी नहीं है तो भी उस समय अगर आपने एक प्रोग्राम दे दिया वो उठा ही देता है, उसको कहते थे। पहले जमाने में इतनी सारे सुविधाएं तो थे, फिर भी कितना उनका लाइफ डिसिप्लिन्ड था, कितना डिसिप्लिन्ड था। इस समय यह करना, बस उठेंगे करेंगे करेंगे, उनको देख के हमको टाइम सेट करना, अला ये हमारा टाइम सेट करना पड़ता था। हाँ वो आ रही है माना इतना ही टाइम है, वो जा रही है माना इतना ही टाइम है, इतना एक्यूरेट उनका लाइफ वो कहा। लेकिन आज देखो इतने चारों ओर घड़ी घड़ी होते लेकिन लाइफ में टाइम आता ही नहीं दिखते। कोई बात नहीं, 10 मिनट लेट होगा तो क्या होगा, वेट करेंगे ना वो हमारे लिए। लेकिन पहले जमाने में ऐसा नहीं था, हाँ कोई हमारे लिए वेट न करे, ऐसे हम 5 मिनट पहले पहुंचे, उसको कहते घड़ी की तरह। बिहेवियर में चेंज आता जाता है जैसे जैसे हम सेल्फ को मैनेज करेंगे। लास्ट में जब हमारे बिहेवियर में चेंज आ गया, माने समझो जो कल था आज नहीं है, जो आज है हमने परिवर्तन करके हमारे फ्यूचर को चेंज कर लिया, तो ऑटोमेटिकली वी हैव ए बेटर फ्यूचर, बेटर फ्यूचर। विदाउट द पास्ट द प्रेजेंट हैज नॉट कम, विदाउट द प्रेजेंट द फ्यूचर इज नॉट गोइंग टू कम। जब तक हम उसी में रहेंगे हिस्ट्री में, वर्तमान हमारे लिए, जब वर्तमान में परिवर्तन नहीं लाएंगे तब भविष्य। इसीलिए संबंध हम उसके साथ जोड़ना चाहते हैं तो स्थिति फर्स्ट स्टेप है, स्थिति फर्स्ट स्टेप। जब हम स्थिति को सेट नहीं कर सकते तब हम वहां अपने आप को जोड़ नहीं सकते हैं। इसीलिए उसके साथ अगर संबंध जोड़ना हम चाहते हैं पहले यहां स्थिति को सेट करना जरूरी है। नहीं हमारे घर में ही रेडियो या टीवी खराब है, टीवी खराब है और वहां सिग्नल आ नहीं रहा है तो मिस्टेक किसका? और हमारा मिस्टेक है ना, वो टीवी सेंटर का तो मिस्टेक नहीं है, टीवी सेंटर का मिस्टेक नहीं। लेकिन दुर्भाग्यवश आज मनुष्य अपने रिसीवर को ठीक नहीं करता है और दोषी ही इज नॉट ओके, ही इज नॉट ओके, ही इज नॉट ओके, ही इज नॉट ओके। कोई ओके है ही नहीं संसार में, अगर ओके हो तो मैं एक दुर्योधन का ट्रेंड हो गया। नहीं भगवत गीता कोई ऐसा महाभारत कहानी का एक कोना नहीं है, दो करेक्टर है वहां, एक दुर्योधन है एक अर्जुन है। आपने स्टडी किया होगा, सुना होगा, नहीं सुना है ना? दुर्योधन एक कैटेगरी है, फर्स्ट अध्याय में ही शुरू हो जाता है ये कितना आउट है और वो कितना आउट है, दोनों आउट पेशेंट ही है ये बेचारा। सर्जन बन के कृष्ण उनका सेटिंग करता जाता है और एक पेशेंट फेल पेशेंट है, कितना भी ऑपरेशन करो ऑपरेशन सक्सेस बट पेशेंट फेल, वो दुर्योधन है क्योंकि वो समझता ही नहीं आउट ही हो जाता है। लेकिन यहां भी ऑपरेशन करता जाता है, दवा देता जाता है, ये पेशेंट थोड़ा थोड़ा धीरे 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 सुधरता जाता। ये दो कैटेगरी, कोई और नहीं है, ये दोनों हमारे अंदर ही है। लेकिन हमें उनको पहचानना है, प्रॉपर दवा जो मेडिटेशन के द्वारा हमें सुप्रीम से मिलता है वो हमें करना, क्योंकि आत्मा का रोग है काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या द्वेष, ये सभी रोग है और हर व्यक्ति संसार में पेशेंट है, मेंटल पेशेंट है, सभी मेंटल पेशेंट है। कोई काम से मेंटल हो गया है, कोई क्रोध से हो गया, कोई लोभ से हो गया, कोई मोह से हो गया, लेकिन हर एक की दवा एक ही है, मेडिटेशन। भगवान कहते हैं सर्व बीमारियों की दवा एक ही है, एक दवा ले लो तो सभी बीमारियों से मुक्त हो जाएंगे, वो है विज्ञान। ये मेडिटेशन कला भी है, ये मेडिटेशन विज्ञान भी है। इसीलिए जब मेडिटेशन को हमारे जीवन का जैसे प्रिज्म में एक रंग, एक रे ऑफ लाइट फॉल्स, सेवन कलर्स आर एमिटेड, इसी तरह मेडिटेशन को हम हमारे जीवन का विभाज्य अंग बनाएंगे तो सात रंग निकलेंगे, फर्स्ट वर्चूज, सेकंड होलिस्टिक हेल्थ, थर्ड ऑप्टिमिज्म, फोर्थ रिलैक्सेशन, फिफ्थ सेल्फ मैनेजमेंट, सिक्स्थ है बिहेवियरल चेंज और लास्ट है बेटर फ्यूचर। सात रंग निकलते हैं तो जीवन हमारा रंगीन बन जाता है, लाइफ बिकम्स कलरफुल, बेटर फ्यूचर, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, पास्ट के बिना प्रेजेंट नहीं, प्रेजेंट के बिना चेंज कर लिया हमने प्रेजेंट में तो ऑटोमेटिकली फ्यूचर हमारा वंडरफुल। इसीलिए हमारा लाइफ, आवर लाइफ बिकम्स कलरफुल, आवर लाइफ बिकम्स मीनिंगफुल, आवर लाइफ बिकम्स सेंसफुल। जब हम मेडिटेशन का अभ्यास आरंभ करेंगे, उसके साथ संबंध जोड़ना शुरू करेंगे तो ऑटोमेटिकली जीवन अर्थपूर्ण बनता जाता है, सार युक्त बनता जाता है, जीवन हमारा रंगीन बन जाता है, जीवन हमारा सक्सेसफुल, सफल बन जाता है। ये है इसके एडवांटेज, प्रॉफिट्स। जब प्रॉफिट्स को सामने रखेंगे तो करना कोई बड़ी बात नहीं। हम जानते नहीं है तो क्या होगा, चलो छोड़ दो कहेंगे, लेकिन करेंगे, उसका परिणाम फल सामने है तो ऑटोमेटिकली करना हमारे लिए मेहनत लगता है। 12 बजे ट्रेन आती है स्टेशन पे, बच्चा सो रहा है केटल बाजू में रख के चाय का, ट्रेन का विसिल सुनते ही फिर दौड़ के उठता है, चाय गरम चाय गरम चाय गरम करके फुल यहां से वहां तक, यहां से वहां तक दौड़ता है। बेवकूफ है क्या, इतनी अच्छी सुंदर नींद, अच्छा स्वप्न भी देख रहा होगा, वो छोड़ के चाय गरम करने के लिए वो बेवकूफ है क्या? हाँ नहीं है, क्योंकि वो जानता है कि अगर ये ट्रेन निकल जाएगी तो 5-10 रुपया जो मैं कमा सकता हूँ वो मेरे हाथ से छूट जाएगी। इसीलिए खोना नहीं है, सोना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन कमाना है। ऐसे ही हम मेडिटेशन से क्या कमा सकते हैं, क्या हम अकाउंट में बैलेंस रख सकते हैं, अगर ये समझ जाएंगे, फायदा समझ जाएंगे तो करना कोई डिफिकल्ट, कायदे से चलना कोई डिफिकल्ट नहीं। ठीक है, ये फर्स्ट है इंट्रोडक्शन। करना जरूरी, करना जरूरी लगता है या नहीं लगता आपको? करना जरूरी है, लगता नहीं लगता? लगता है, क्योंकि आजकल तो मेडिटेशन कोई टाइम वेस्टिंग काम नहीं है, सभी सजेस्ट करते हैं कि मेडिटेशन करो, मेडिटेशन करो। अभी नेक्स्ट स्टेप आता है तो मेडिटेशन क्या है, क्योंकि पहले भी मैंने बताया ये पूरा खेल संसार का है, ये तीन के बीच में, एक प्रकृति, एक पुरुष और एक परमात्मा। प्रकृति में है पांच तत्व, विज्ञानियों ने कहा ये पांच तत्वों से बना हुआ है, यह सॉलिड्स लिक्विड्स एंड गैसेस से यह सृष्टि है। ऑर्डिनरी पंडित लोग जो पढ़े लिखे थे उन्होंने कहा पंच तत्वों से यह सृष्टि बनी हुई है, और उनसे भी ऑर्डिनरी लोगों ने कहा यह लिविंग और नॉन लिविंग, जड़ और जीव, ये दोनों से यहां तक सीमित रखा। इसको हम इन चक्षुओं से देख सकते हैं, कानों से सुन सकते हैं, ये सब इंद्रियों से हम फील कर सकते हैं, जो आपने कल के लेसन में सुन लिया। लेकिन इससे भी भिन्न है जिसको हम मेटाफिजिक्स कहते हैं, या इसको कहते हैं अभौतिक, और वो है हम फील कर सकते हैं, न इंद्रियों से हम देख सकते, जिसको हम कहते हैं एक पुरुष एक परम पुरुष, इनको हम अनुभव कर सकते हैं, ना कि इन पंच तत्वों से बने हुए शरीर से उनको महसूस कर सकते। भाई परमात्मा को टच करो, जैसे प्रहलाद की कहानी में दिखाते, हाँ इस खंब में है क्या? हाँ है। नहीं, इसमें एक हाँ, वो फील कर सकते हैं कि भगवान मेरे साथ है। से ही आत्मा पुरुष परम पुरुष परमात्मा इन दोनों का हमें अनुभव कराना है कराता है मेडिटेशन और वो है विज्ञान। एक तो फर्स्ट स्टेप में कला देख लिया मेडिटेशन कैसे कला है, अभी सेकंड स्टेप में हम देखेंगे मेडिटेशन कैसे विज्ञान। ज्ञान हम बाह्य दुनिया में देख सकते हैं अनुभव कर सकते हैं, लेकिन विज्ञान हमारे आंतरिक दुनिया में हम अनुभव कर सकते। इतने सिंपल टेक्नोलॉजी मेडिटेशन राम राम करो जंगल में जाओ पेड़ के नीचे बैठो ये करो वो करो नहीं, सिंपल हम देखते हैं योग चित्त वृत्ति निरोधः योग। पतंजलि महर्षि ने एक सुंदर व्याख्या दी चित्त वृत्ति निरोधः योग, चित्त की वृत्ति ही चंचलता है उसको निग्रह करना योग है। ये कोई दिखता है क्या? अभी आप यहाँ बैठे हैं लेकिन कौन कौन कोलाबा चक्कर लगा के आ रहे हैं क्या पता पड़ता? कोई टीवी देखने वाले होंगे न्यूज, कोई गार्डन में घूमने वाले होंगे, कोई वहां अपने फ्रेंड्स के साथ इधर उधर के समाचार, कुछ ना कुछ अपना टाइम टेबल वहां होगा। इस समय बराबर मैं उसके साथ होता था, मन सीधा जाएगा वो हमें पता पड़ता है क्या? फिर भी पता पड़ता है। कैसे कैसे? फिजिकली प्रेजेंट मेंटली अब्सेंट। आप बैठे हैं यहाँ लेकिन आंख से पता पड़ जाता वो बैठे नहीं, कोई ऐसा झुटका कर रहे पता पड़ जाता है इनको समझ में आ नहीं रहा। इसके लिए देर हाँ वो महसूस करने की शक्ति हर एक की अपनी अपनी। इसीलिए यहाँ भी अभी मेडिटेशन कला कैसे है हमने देख लिया, अभी मेडिटेशन विज्ञान कैसे, ये फर्स्ट डेफिनेशन। योगः चित्त वृत्ति निरोधः, चित्त की वृत्ति चंचलता है उस चंचलता का निरोध करना निग्रह करना ही योग है। अभी तिरुपति के बालाजी के मंदिर में या आपके महालक्ष्मी के टेम्पल में एक भक्त भी खड़ा है एक चोर भी खड़ा है, दोनों सेम स्टाइल कर रहे हैं लेकिन तीसरा व्यक्ति जो देख रहा है उनको पता नहीं पड़ता है कि भक्त कौन है इसमें चोर कौन है। अंदर की फैक्ट्री दोनों की विरुद्ध दिशा में ही चलती रहती है या नहीं? हाँ हाँ, व्यक्ति खुद समझ सकता है कि अंदर क्या हो रहा है, भले बाहर का व्यक्ति समझे ना समझे बाद में वो पता पड़ जाता है, लेकिन पहले अपने आप को देखना वहां की चंचलता को दूर करना। जो थॉट्स जो संकल्प हमारे पास्ट में जा रहे हैं दुनिया में जा रहे हैं और कहां कहां जा रहे हैं उन सब को चैनलाइज करके एक दिशा देना, इसका नाम है मेडिटेशन, वो है विज्ञान। स्थूल आंखों से हम देख नहीं सकते, सूक्ष्म में हम यह काम कर सकते हैं और उसी का नाम है मेडिटेशन। इसीलिए एबीसीडी ऑफ मेडिटेशन इज ए अवॉइड द अननेसेसरी थॉट्स फर्स्ट स्टेप। अवॉइड जब मेडिटेशन करने बैठते हैं उसके लिए फर्स्ट स्टेप है अवॉइड। यहां बैठकर वहां क्या हो रहा है सोचने से होगा क्या? उसने दरवाजा ठीक बंद भी नहीं किया होगा आपका बेटे ने, यहां बैठकर आप सोचते रहेंगे तो उससे फायदा क्या? कुछ परिणाम फायदा निकलता है नहीं। उससे अच्छा ठीक है भगवान थोड़ा उसको बुद्धि दो कहना, शांति से उस थॉट से अपने आप को डिटैच करना, नहीं तो आपका मन आपको वहां ही भटका देगा। इसीलिए मेडिटेशन में हमेशा फर्स्ट स्टेप याद रखना अवॉइड द अननेसेसरी थॉट्स, सेकंड स्टेप में ब्यूटीफाई द थॉट्स विथ पॉजिटिविटी एंड ऑप्टिमिज्म। पॉजिटिविटी होना चाहिए सकारात्मकता, नेक्स्ट है ऑप्टिमिज्म आशा। नहीं नहीं वो ऐसा छोड़ के जा नहीं सकता, आखिर वो मेरा बेटा है ना, बस वहां फुल स्टॉप लगा दो। नहीं तो नहीं नहीं ये हमेशा ऐसा ही करता है, जब भी मैं कहती हूँ तब भी ये छोड़ के ही जाता है, मैं को कितने बार रिपीट ये करेंगे तो और एक और एक और एक और एक के पीछे आपको खड़ा करेगा आपका मन। इसीलिए ब्रेक पॉजिटिव नहीं, सब अच्छे हैं सब करेगा। एक सुंदर विचार अपने मन में सृजन कर, सी चैनलाइज द थॉट्स। एक ही थॉट नहीं आएगा हमेशा, व्यर्थ हमेशा एक के पीछे एक के पीछे एक के पीछे एक के पीछे आता, इसीलिए उनको चैनलाइज करो, कोई इस दिशा में कोई इस दिशा में जा रहा है तो उनको एक मार्ग दिखाओ। मार्ग दिखाने के बाद डी डायरेक्ट देम टुवर्ड्स द डेस्टिनेशन। हाँ भाई तुम्हारा डेस्टिनेशन ये है, तुम्हारा डेस्टिनेशन ये है, मंजिल है तुम्हारा, भगवान से मिलना है, भगवान से बात करनी है, भगवान से सर्व संबंध जोड़ना है, ये तुम्हारे मेडिटेशन का लक्ष्य है। तो तुम्हारे विचारों को दिशा देकर मंजिल दिखाओ, नहीं तो इसी दुनिया में भटकते रहेंगे विचार। ये चौथा स्टेप है। पांचवा स्टेप है, यहाँ बहुत अच्छा लगता है लेकिन बाहर जाते ही इधर उधर के बातों में हम आ जाते हैं, इसीलिए बार बार अंडरलाइन करो, एनर्जाइज योर थॉट्स, एनर्जाइज करो। नहीं नहीं हम आए हैं यहाँ तो बराबर मेडिटेशन सीख कर ही जाए। यहाँ कहे कि हम वहां बैठते हैं रहते हैं तो इतना पावरफुल नहीं होता है मेडिटेशन। यहाँ कोई और बात ही नहीं है, मेडिटेशन मेडिटेशन मेडिटेशन। इसीलिए यहाँ हम अच्छे से अच्छी तरह जो चार पांच दिन हमें मिला है उसका हम सदुपयोग करें और बार 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 मन को ये ट्रेनिंग दे कि मुझे भगवान के तरफ अपने विचारों को ले जाओ। ये है एनर्जाइजिंग द थॉट्स। जब एनर्जाइज करते हैं तभी कुछ न कुछ हो जाता है, या तो बारिश आती है, या तो पाँव में दर्द होता है, बैठे बैठे पेट में दर्द होता है, या तो मेडिटेशन करते सिर में दर्द, कोई न कोई प्रकार से। नहीं वहां भी यज्ञ करते थे तो ये राक्षस आ जाते थे उनको डिस्टर्ब करने, ऐसे हम भी यहाँ कुछ अच्छा कर्म करने जाते हैं तो कुछ न कुछ आ जाते। उसके लिए फॉरगेट द वर्ल्डली मैटर। अला वहां हमारे घर में कितना अच्छा होता था, ये वर्ल्डली मैटर, जो भी दुनिया के सुख सुविधा को थोड़ा साइड करो। भले आप वहां अकेले कमरे में रहते थे, यहाँ आपके कमरे में दो तीन और है तो भी वो तो रात को और जोर जोर से गुर गुर करेंगे, आपको नींद नहीं आ रही। ऐसा नहीं सोचना यहाँ नींद नहीं आ रही तो कल क्लास में पूरा कर देंगे उसको, ओके टाइम नहीं, चलो यहाँ दो तीन दिन की बात एडजस्ट कर लेंगे। हाँ अगर नींद नहीं आ रही तो चलो बाबा के कमरे में जाके हम थोड़ा मेडिटेशन करेंगे, कमाई हो जाएगी। अगर थॉट को ऐसा चेंज कर देंगे तो ऑटोमेटिकली कमाई की कमाई होगी और मन। इसीलिए ये अवॉइड द नेसेसरी थॉट्स, बी ब्यूटिफाई द थॉट्स, दी चैनलाइज द थॉट्स, दी डायरेक्ट देम टुवर्ड्स द डेस्टिनेशन, ई एनर्जाइज या फॉरगेट, देन जी स्टैंड्स फॉर गॉड रियलाइजेशन, परमात्मा साक्षात्कार आपको होगा। मतलब ऐसा हुआ इतने बड़े रूप में हुआ, जैसे भगवत गीता में दिखाते हैं विश्व रूप दर्शन में क्या क्या हुआ, नहीं दैवत्व का आप अनुभव कर सकते हैं। गॉड रियलाइजेशन मना उस डिविनिटी का आपको अनुभव होता जाएगा। हम कितने छोटे हैं इस दुनिया में, उस परम शक्ति के सामने यह अनुभव करेंगे। दूसरे लेवल में हम उसको मात पिता भाई बहन सखा स्वामी शिक्षक के रूप में उसका अनुभव करते जाएंगे। तीसरे स्टेप में भगवान हमारा साथी है यह अनुभव करते जाएंगे। हम हमारे स्क्रिप्चर्स में देखते हैं, एक है प्रहलाद की कहानी, मैं भी बार बार वो याद करती रहती हूँ। भले हमारे लिए कोई नहीं है दुनिया में, शरीर भी हमें साथ नहीं देगा अंत तक, शरीर के संबंधी क्या साथ देंगे, लेकिन हर पल भगवान को साथी माना, कितने भी परीक्षाएं आए विघ्न आए लेकिन उस पर विश्वास उसका कभी कम नहीं हुआ। हम यहाँ तो प्रेयर करते हैं कि इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास, प्रेयर करते रहते हैं लेकिन पता नहीं क्या होगा, भगवान करेगा या नहीं करेगा। विश्वास माँ मंदिर में तो घंटी बजा के आए, बाहर चप्पल पहनते ही पता नहीं क्या होगा, कहेंगे तो विश्वास कहाँ उड़ गए। वो होगा, प्लस हो माइनस हो, अच्छा हो बुरा हो, भगवान मेरा साथी है यह विश्वास रखेंगे तो जीत हमारी अवश्य। ये फर्स्ट स्टेप। दूसरा स्टेप में आपने सिंड्रेला का भी कहानी सुना होगा बच्चों को, कितना भी दुनिया हमें दबाने का कोशिश करे पांव खींचकर हमारी समाधि ही क्यों न करने का सोचे, लेकिन अगर हमारे कर्म श्रेष्ठ है तो हमारे कर्म का फल परिणाम और फल के रूप में थोड़ा टाइम लेगा, लेकिन सिद्ध जरूर होगा। इसीलिए कहा जाता है ट्रुथ टेक्स इट्स ओन टाइम टू रिवील। हम जबरदस्ती सत्य को सिद्ध करना चाहेंगे वो सिद्ध नहीं होता है, अपने टाइम पर सत्य सामने आएगा संसार के। क्यों? क्योंकि 3 फीट का है मनुष्य, तो जो सिर पर पानी डालते हैं वो पांव तक जल्दी आ जाता है। अगर व्यक्ति 6 फुट का है तो थोड़ा लेट आता है, आएगा तो जरूर, कहीं बीच में चला नहीं जाएगा, सिर पर डाला हुआ पानी पांव तक आएगा। इसीलिए यू कैन काउंट द नंबर ऑफ सीड्स इन एन एप्पल बट यू कांट काउंट द नंबर ऑफ एप्पल्स इन ए सीड कहा जाता है। सेब काटो, 6 है 8 है 10 है 20 आप गिनती कर सकते हो, लेकिन एक बीज से कितने फल निकलने वाले हैं यू कांट। कर्म करो फल मिलेगा, तो वो हम विशेष अभ्यास करते हैं मेडिटेशन। तो हमने देखा कि प्रकृति पुरुष परमात्मा, प्रकृति के साथ भी पुरुष का कनेक्शन है जो हम रखते आए, विनाशी के साथ विनाश का संबंध कभी हमें सुख नहीं दिया। अगर सुख हमने समझा तो भी अल्टीमेटली वो दुख ही रहा, या तो वो गए या तो हम बीमार हो गए छोड़े, कोई ना कोई कारण से प्रकृति के साथ का संबंध, प्रकृति के साथ का योग हमें अल्टीमेटली दुख दिया। और अभी हमने समझ लिया कि प्रकृति का संबंध परम पुरुष के साथ अगर है, अविनाशी बनकर अविनाशी के साथ हम संबंध रखेंगे तो ऑटोमेटिकली हमें अल्टीमेटली सुख मिलेगा। ये है बेसिक प्रिंसिपल ऑफ मेडिटेशन, सिंपल। विनाशी के साथ विनाशी का संबंध दुख है। हाँ, हम देह नहीं आत्मा है, अविनाशी बनकर भी विनाशी के साथ हम अगर संबंध रखेंगे तो भी दुख है। आत्मा समझकर देहधारियों के साथ दुख रखेंगे तो अर्जुन का कैरेक्टर याद रखना, वो समझाता हाँ ये सब ठीक है कृष्ण, जो तुम कहता है ठीक है, लेकिन करना कितना मुश्किल है। प्रश्न पूछता है स्थित प्रज्ञस्य का भाषा, भाई तुम कहते हो ये और युद्ध करो, दूसरे ओर कहते हो योगी, भाई तुम स्थित प्रज्ञ बनो कहते हो, आखिर वो होता क्या है, का भाषा माना कौन सा लैंग्वेज बोलता है, नहीं उनका क्या है स्थिति क्या, तो वो है। दुर्योधन माना विनाशी बनकर विनाशी के साथ संबंध रखना, क्योंकि विकारी व्यक्ति विकारों के साथ ही रखेगा। यहां आत्मा बनकर विनाशी के साथ संबंध रखेंगे तो भी अल्टीमेटली रिजल्ट दुख है। इसीलिए वो आगे 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 बढ़ाते, आत्मा बनकर मुझ परमात्मा के साथ, अविनाशी बनकर अविनाशी के साथ संबंध रखो तो रिजल्ट है अविनाशी। नहीं, मैथमेटिक्स में एक फॉर्मूला है, प्लस इंटू माइनस इक्वल टू माइनस, माइनस इंटू प्लस इक्वल टू माइनस, माइनस माइनस इंटू माइनस इक्वल टू प्लस, एंड प्लस इंटू प्लस इक्वल टू, ऐसे ऐसे विनाशी विनाशी का संबंध दुख है, अविनाशी विनाशी का संबंध दुख है, लेकिन अविनाशी बनकर अविनाशी के साथ संबंध रखेंगे तो प्लस ही प्लस से जो हमें चाहिए वो मिलता रहेगा। ये प्रिंसिपल है। तो आपने कल के लेसन्स में ये दोनों बात समझ लिया कि मैं शरीर नहीं, मैं एक चैतन्य शक्ति आत्मा हूं, ये शरीर मेरे ऊपर का एक कोटिंग है, लेयर है, एक एक लेयर है, एक एक लेयर को उतारते जाओ उतारते जाओ, ओरिजिनली मैं क्या हूं। हर एक के 4 चेहरे हैं, एक दुनिया को दिखाने के लिए, दूसरा है लोग मुझे क्या समझे, हु एम आई, हाउ पीपल सी मी, हाउ आई विश अदर्स टू सी मी, हाउ रियली एम आई, रियली एम आई। आईने के सामने देखेंगे ये काले गोरे लंबाई चौड़े, ये सुंदर है कुरूप, ये सब आता है, अमीर है गरीब है ये आता है। हाँ वो कैसे मुझे देख रहे हैं सेकंड है, उसके आधार से हाँ मैं सीट पर हूँ, लोग अलो करेंगे, रिटायर हो गया कोई देखेंगे नहीं वो सेकंड, लेकिन मैं क्या समझती हूँ तीसरे लेवल में, मैं रिटायर होने के बाद भी लोग मुझे उसी रिस्पेक्ट से देखे, हाउ आई विश अदर्स टू सी मी, वहां दुखी हो जाती हूँ। लेकिन फोर्थ है, ये तो आना जाना है, ये तो ट्रेन में बैठे जर्नी है, उतरना चढ़ना है ही है, उतार चढ़ाव जीवन में है ही है, लेकिन दोनों में मुझे अपनी स्थिति को संतुलन में रखना है, ये मेरे जीवन का लक्ष्य है। ये है विज्ञान, ये है कला, और वो हम धीरे धीरे विकास करते जाते हैं, डेवलप करते जाते मेडिटेशन। क्यों? क्योंकि विनाशी के साथ का संबंध हमारा कट होता जाता है, अविनाशी के साथ हमारा संबंध जुड़ता जाता है। आज एक मिनट है, कल पांच मिनट होगा और दस मिनट होगा, परसेंटेज हम बढ़ाते जाएंगे तो ऑटोमेटिकली इस वर्ल्डली दुनिया, इस सांसारिक दुनिया का खींच धीरे 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 कम होता जाएगा यहाँ का परसेंटेज, और ये रियलाइजेशन जरूरी है। अंत तक नहीं 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 करते रहेंगे तो फिर से वो दुर्योधन का कैरेक्टर है, मार खाएंगे मरेंगे, लास्ट में रियलाइज हो गए तो करेंगे, कोई फायदा नहीं। इसीलिए हम सभी का भाग्य है जो हमारे पूर्व जन्म में हमने पुण्य कर्म किया था वो हमें यहां तक ले आया। ऐसा महसूस करते हैं, नहीं तो हम कहां दुनिया में भटक रहे होते। कुछ किया था जो हमें यहां तक ले आया। तकदीर जगा कर तो हम आए हैं, और भी आगे जगाना है, उसके लिए हमें मेहनत करनी। तो ये है समझ, इस समझ के आधार से हम आगे। मेडिटेशन के लिए कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं है, बस उसको धन्यवाद करो, वो भी मेडिटेशन है। उसने जो भी किया है उसके लिए धन्यवाद भी करो, वो भी मेडिटेशन ही है। कोई मंत्र जरूरत नहीं, आप शांति मनुष्य शांति शांति समझते नहीं है, बोलते रहते बस पूरा हो गया, चलो उठ। उनके लिए शादी के मंत्र भी वही है, उनके लिए श्राद्ध के मंत्र भी वही है, उनको कोई फीलिंग नहीं है उसमें, चलो ये शादी है ठीक है हम आएंगे। शादी के बाद कहाँ जा रहे, उनका श्राद्ध का, चलो ठीक है वहां श्राद्ध, दोनों मंत्र बुक लेंगे, चलो इधर जो आया वो थैली में भरा, इधर से जो आया थैली में भरा, निकल गए, चाहे शादी हो चाहे श्राद्ध, क्या फर्क पड़ता है। ऐसे नहीं है हमारा मेडिटेशन, मेडिटेशन कमाने के लिए नहीं, मेडिटेशन है दिनों दिन परिवर्तन आना जरूरी है। हमें खुद को देखना है, मन के दर्पण में परिवर्तन कहाँ तक लाया है मैंने। 50 साल सीनियर हूँ, 60 साल सीनियर हूँ, ये इम्पोर्टेंट नहीं है। हम बोलते रहेंगे कि हमारा बायोडाटा ये हम राजयोग इतना साल कर रहे हैं, नहीं, लोग बोले कि क्या लाइफ। देखो मैं हमेशा याद रखती हूँ डॉक्टर अब्दुल कलाम जी को, क्या जीवन उनका क्या मृत्यु उनका, दोनों एक आदर्श। भाई कोई घंटी बजाने को ना, लेकिन कोई शत्रु नहीं उनका, अजात शत्रु। जीवन जिया तो क्या जीवन, कर्म योगी का जीवन, जिस सीट पर बैठा उस सीट का कोई अटैचमेंट नहीं, सीट से उतरा, और मृत्यु भी कितना आदर्श, अपने पानी पिया, गिरा और गया, किसी के पानी का इंतजार भी नहीं किया। बैलेंस क्या रहा पीछे जाने के बाद भी लोग ढूंढते रहते, राष्ट्रपति के भवन से बाहर आते ट्रकों ट्रक भर के जाते हैं, लेकिन बेचारा इसका क्या था? हाँ, सेवा भी क्या की, भाई पॉलिटिक्स में नहीं जाओ बच्चे, एक आदर्श जीवन मौल्य आधारित जीवन जियो, देश के लिए सहयोग दो। देश ने क्या दिया पूछो नहीं, देश के लिए खुद क्या दे रहे हो, ये लाइफ क्या उनका, डेथ क्या, नहीं ये जीवन है। मेडिटेशन कोई वहां बैठे और वहां बैठने के बाद सोचते रहे इसका सत्यानाश कैसे हो, ये भगवान इसको मेरे रास्ते से। इसीलिए सर्वे जना सुखिनो भवंतु कहे दिल से, वो भी मेडिटेशन। लेकिन यहाँ फिर भी एक ट्रेनिंग मन को दी जाती है। पहला लेसन तो आपका पूरा हो गया है, सेकंड लेसन भी आपको पूरा हो गया है, संबंध जोड़ना बाकी है। मैं कौन हूँ, मेरा कौन है, ये ज्वाइंट हो जाए, ये ज्वाइंट हो जाए, बस वही योग। क्योंकि योग शब्द आया ही संस्कृत से, युज्यते अनेन इति योगः, संबंध जोड़ना। अभी मैं आत्मा हूँ पता पड़ गया, मेरा पिता परमात्मा है वो भी पता पड़ गया, हम दोनों का बायोडाटा भी क्लियर है, मैं भी बिंदु वो भी बिंदु है, वो भी परमधाम निवासी है, मैं भी परमधाम निवासी हूँ, मैं भी सर्व गुणों शक्तियों का स्वरूप हूँ, लेकिन वो सागर है, मेरा कर्तव्य भी विश्व कल्याण है, उसका कर्तव्य भी विश्व कल्याण है। इतनी समानता होने के बाद जोड़ना संबंध क्या डिफिकल्ट है। वहां भी शादी अरेंज करते हैं, अरेंज्ड मैरिजेस में वो देखते हैं ना, हमारे खानदान के, इस खानदान के, ये बैकग्राउंड के, ये जात के, ये सब देखते हैं, कितना भी देखे, नहीं नहीं हम बहुत फॉरवर्ड है कहे तो भी इसमें वो बैकवर्ड ही बन जाते हैं, बराबर देखते हैं। नहीं कोई गरीब से करना चाहते हैं क्या, नहीं है वो क्या तुमको खिलाएगा, बैठ जा मैं सब ढूंढ लूंगा, वहां भी समानता देखते हैं, यहाँ तो समानता हमने समझ लिया, वो भी अविनाशी मैं भी अविनाशी, वो भी बिंदु मैं भी बिंदु, हाँ मैं भी शांति प्रेम सब मूल्यों का स्वरूप, मैं वो सागर है, मैं भी वहां का है, ये भी वहां का, सब समानता होने के बाद याद करने में क्या डिफिकल्टी। कोई एक समानता का अंश खिसक जाता है तो डिफिकल्ट होता है फिर से चढ़ के जोड़ने में, तो सिंपल लग जाता है। इतना समझ में आए क्लियर है तो बाकी यहां वहां बुद्धि भटकती ही नहीं। इसीलिए योग वाशिष्ठ में वशिष्ठ ऋषि राम को बहुत सुंदर योग का डेफिनेशन देते, योग मन प्रशमन उपाय, मन उठता है बैठता है दौड़ता है कहाँ कहाँ भागता है उसको बिठाओ, जैसे बच्चे को माँ बिठाती है, वो जो चाहेगा वो देगी नहीं, जो नहीं चाहेगा वो छोड़ेगी नहीं, लेकिन बच्चे के भलाई उसका लक्ष्य होता है। ऐसे ही जीवन की भलाई मन की भलाई लक्ष्य रख कर अगर मन को ट्रेनिंग दोगे वो है योग। योग हा समत्वम, जीवन में ऊपर नीचे है उतार चढ़ाव है, सुख दुख लाभ हानि जय पराजय मान अपमान स्तुति निंदा है, इसमें संतुलन को बनाकर रखना यही योग है। योग हा कर्म सुकौशलम, कर्म में कुशलता लाना ही योग है। और इम्पोर्टेंट डेफिनेशन है, योग हा स्वदर्शनाय न तु परदर्शनाय न तु प्रदर्शनाय, परदर्शन के लिए भी योग नहीं, वो क्या कर रहा वो क्या कर रहा वो क्या कर रहे वो कम कर रहा है ज्यादा उसके लिए भी योग नहीं, प्रदर्शन के देखो मैं कितना योग्य हूँ, नहीं वहां देखो क्या क्या गुरु के पीछे श्री श्री लगाते हैं, 1008 लगाते हैं, कितने बड़े मठ होते हैं, कितना उनका क्या पाठ होता है, देखो हम इतने, प्रदर्शन के लिए भी योग नहीं है न, प्रदर्शन के लिए भी नहीं है न, परदर्शन दूसरों को देखने के लिए भी योग नहीं, योग स्वदर्शन अपने आप, कितना मैं उसी को अपना मानती हूँ, हर पल में जीवन के हर पहलू में हर कर्म में भगवान को मैं साथी कितना समझती, बस यही योग। इसके लिए कोई कमेंट्री की जरूरत है, हमारा दिल का प्यार उसके साथ कितना है उसके लिए कोई मेजरमेंट है क्या, दूध कितना है उसके लिए मेजरमेंट है, 5 लीटर 10 लीटर ही है, कितना किलोमीटर में चली हूँ 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर इसके लिए भी एक मेजरमेंट है, नहीं वेट कितना है 1 केजी 10 केजी 15 केजी, लेकिन मुझे उससे प्यार कितना है उसके लिए कोई मेजरमेंट है, कितना प्यार करती हूँ मैं तुमको, बस बात मत पूछो, इतना ही है मेजरमेंट क्या है, बस बात मत, इतना हाँ उससे मुझे कितना नफरत है 10 क्विंटल 5 केजी कितना नफरत है, नफरत कितना है, बस बात मत पूछो, इतना ही है बस बात मत पूछो बना उसका कोई मेजरमेंट। तो अगर हमें उससे दिल का स्नेह दिल का प्यार है तो उसके लिए कोई मेजरमेंट है ही नहीं, उसके लिए कोई कमेंट की जरूरत नहीं, ABCD वही 26 लेटर्स है, चाहे उससे लव लेटर लिखो, चाहे उससे प्यार दो गीत बनाओ, चाहे एक निबंध बना, चाहे ऐसे बने, जो भी बनाओ वही 26 लेटर्स है ना। हाँ, दिल से उसको कहो, हे पिता तुमने कितना हमारे लिए किया, उसके लिए शुक्रिया 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 कहो, तो वो भी मेडिटेशन। ठीक, फिर भी यहाँ एक ट्रेनिंग की तरह, एक मन को एक ट्रेनिंग की तरह कमेंट्री दी जाती है, जहां दो शब्द इम्पोर्टेंट है, एक चिंतन एक दर्शन। चिंतन यहां चलता रहता है, दूसरा दर्शन विजुअलाइज करते जाते हैं, ये दोनों साथ साथ चलते, एक चिंतन थॉट लेवल पे, दर्शन यहां। जैसे जैसे हम इन दोनों को साथ ले जाते हैं, वैसे वैसे इस दुनिया का जो भी जंजीरे हमने बांध के रखा है अपने आप को, वो एक के बाद एक सूक्ष्म स्थूल कट होते जाते हैं, हम यहाँ से ऊपर उठते हैं। क्योंकि योगा इज एन इनर जर्नी एट द फर्स्ट लेवल, योगा इज एन अपर जर्नी एट द सेकंड लेवल, योगा इज एन आउटर जर्नी एट द थर्ड लेवल। पहले इनर जर्नी, अपने अंदर की दुनिया को देखते हैं, जहाँ हमारे विचार है, हमारे स्मृतियां है, हमारी भावनाएं हैं, वहां हम पॉजिटिविटी को भरते हैं। नेक्स्ट ऊपर चालू हो जाती है ऊर्ध्व यात्रा। ऊर्ध्व यात्रा में यहाँ के एनिमल इंस्टिंक्ट्स जो भी मनुष्य में भरे उनको हम धीरे धीरे काट दे जाते हैं, ऊपर डिविनिटी की ओर हमारी यात्रा शुरू होती है। जैसे हमारी डिविनिटी की ओर शुरू हो जाती है यात्रा, हमारी बाह्य यात्रा आउटर जर्नी आरंभ हो जाती है। आउटर जर्नी के साथ साथ है हमारी सेवा, इनर जर्नी परिवर्तन के लिए, अपर जर्नी उन्नति के लिए, आउटर जर्नी सेवा के लिए। इसीलिए तीन बातें सौगात के रूप में यहाँ से ले जाना, एक स्थिति, एक संबंध और तीसरी सेवा, ये तीन है तो जीवन पूर्ण है। अगर इन में से कोई एक में त्रुटि है, जीवन कला संपन्न भी नहीं बन सकती, जीवन विज्ञानमय भी नहीं बन सकती, कोई ना कोई के प्रभाव में हम आ जाते। तो तीन स्थिति रहे, ठीक रहे, संतुलित रहे। दूसरा संबंध सबके साथ, क्यों? क्योंकि शत्रु को मित्र बनाना भी एक कला है, मित्र को मित्र बनाकर रखना कला है, सर्व के साथ मित्रत्व निभाना कला है। नहीं तो एक भी हो तो वो हमें शांति से न सोने देंगे न जीने देंगे। इसीलिए ओके भाई, हेलो, ओम शांति, चलो क्या लेना देना है, आज का दिन ही हमारा लास्ट है, तो क्यों शत्रुत्व लेकर जाऊं। इसीलिए एक स्थिति, एक संबंध और हमारा जीवन का लक्ष्य ही सेवा है, उसको पूर्ण करते जाना, और यही है योगी जीवन की पहचान। स्थित प्रज्ञस्य का भाषा, यही भाषा, स्थिति संबंध, हर श्वास मेरा सफल सेवा, यह है मेडिटेशन। फिर भी चिंतन यहाँ चले चल, दर्शन विजुअलाइज करते रहेंगे, हम 3 मिनट इसका अभ्यास करें। जैसे जैसे आपको टाइम मिलता है सारे दिन में यह अभ्यास करते रहना, सुबह उठते रात को सोते कंपलसरी ये करना है, ठीक है? क्योंकि 3 मिनट 5 मिनट 10 मिनट का योगी जीवन नहीं है, हमारा जीवन ही योगी जीवन है। वो अलग, हम अलग नहीं है, हमारे साथ वो है, हम उसके साथ है, अलग कोई कर ही नहीं सकता। बस इतना पक्का हम अपने आप में करेंगे तो हमें डिफिकल्टी, तो 3 मिनट हम कमेंट्री देंगे, वैसे वैसे चिंतन दर्शन दोनों। शरीर को सीधा कीजिए, आंखें चाहे बंद करे चाहे खोले, लेकिन खोल कर दृष्टि को एकाग्र करना मेडिटेशन में सहायक रहे। 3 बार ओम का ध्वनि हम सब मिलकर निकालेंगे। श्वास लीजिए पूर्ण रीति से, श्वास छोड़ते समय ओ
इन आंखों से देखने वाली, कानों से सुनने वाली, मुख से बोलने वाली एक चैतन्य शक्ति हूं। मैं आत्मा शांत स्वरूप, दया स्वरूप, शक्ति स्वरूप हूं। वास्तव में मैं आत्मा, परंधाम, शांति धाम के निवासी हूं। वहां से इस सृष्टि मंच पर अनेक नाम रूप धारण कर पार्ट बजा रही हूं। अब मुझ आत्मा को वापस स्वदेश में जाना है, जहां मेरे सम्मुख मेरे पिता परमात्मा है, वो भी ज्योतिर्बिंदु लेकिन गुणों एवं शक्तियों में सिंधु के समान है। सिंधु से मैं अपने आप में गुणों एवं शक्तियों को भरते दिल से शुक्रिया कहते फिर से इस सृष्टि मंच पर पाठ बजाऊंगी। बाप के हाथ में हाथ, साथ चल विश्व सेवा में हर श्वास को सफल बना। ओम शांति। बस इतना भी हम कमिट करें धन्य है, क्योंकि फोन नंबर तो आजकल आप जानते लंबे लंबे हो गए, हमारा ही फोन नंबर हमको याद नहीं रहता। नहीं, पहले जमाने में लैंडलाइन था, उसमें लोकल कॉल के लिए कोई जीरो नहीं आता था, कोई एसटीडी कोड नहीं होता, 2374-2395 ऐसे आ जाते थे। जब हम दूसरे जगह करना था एसटीडी कोड लगाना पड़ता, उसमें पहला डिजिट जीरो है, तो लोकल कॉल्स कट हो जाते नहीं? इंटरनेशनल कॉल से लंदन में करना, अमेरिका में करना है, तो इंटरनेशनल कॉल के लिए एसटीडी कोड नंबर में दो डिजिट जीरो है, जहां लोकल भी कट नेशनल भी कट हो जाते हैं। लेकिन हमें अभी इस दुनिया से ही दूर जाना है तो 3-0 लगाना है, और उस दुनिया में एक ही एक बैठा है, उसका फोन नंबर है, 0001। सिंपल याद रहेगा ना सबको, हाँ? और डे टाइम में देखो फोन करेंगे, कई बार नॉट रीचेबल करता है, कई बार सब्सक्राइबर बिजी करता है, कई बार लिंक लाइन मिलता ही नहीं है डे टाइम में, लेकिन सुबह सुबह लगाओ क्लियर मिल जाता है। ऐसे ही बाप कहते हैं अमृत वेले मुझे याद करो, मेरे से शक्ति लो और सारा दिन कर्म क्षेत्र में कला संपन्न जीवन जियो। यही उसका वरदान है, वरदान को हम अपने जीवन में लाएंगे और जीवन को सार्थक बनाएंगे। इस दिशा में आप सभी को सर्वशक्तिवान बाप यश कीर्ति दे, आयु आरोग्य दे, सदा सफलता दे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सभी को धन्यवाद।
सर्वत्र धर्म का हास देकर भी सो रहा है आदमी, फिर संबंध की दुहाई देकर रो रहा है आदमी, पहले विकर्म में हो लिप्त, फिर विनाशी वस्तुओं के बंधन से उपजी जटिलताओं में खो रहा है आदमी, सभी सुख खो रहा है आदमी। हमारी आदरणीय बहन जी ने अपने नाम को सार्थक करते हुए हम सभी के जीवन में सारे रंगों को मेडिटेशन के द्वारा किस तरह बिखेरना है इसकी सहज रीति बताई। उन्होंने जीवन में हमारे कर्म की क्या प्रधानता है और अविनाशी का अविनाशी के साथ सच्चा संबंध कैसे करें, और वही वास्तविक मेडिटेशन है। इन सभी के लिए दीदी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और एक जोरदार तालियों के साथ